आज रामानंद राय जी का तिरुभाव दिवस है, सो मैं रुक्मिणी कृष्णा प्रभु, केशव मुरारी प्रभु, ऋषित केशव प्रभु, उनकी वाइफ, तो सब जितने भी सीनियर भक्त हैं और आप सब जो भक्तों के चरण कमलों में प्रणाम करके मैं उनके बारे में कुछ चर्चा करता हूँ। तो थोड़ा सा टेक्निकल भी, थोड़ी टेक्निकल चर्चा भी करेंगे, तो टेक्निकल चर्चा भी होनी चाहिए, है ना, फिलॉसफी के ऊपर भी बात होनी चाहिए। सो जो रामानंद राय के पिता भवानंद राय हैं, और भवानंद राय जो है वो आलालनाथ ब्रह्मगिरी रहते थे, वो उनके 5 पुत्र थे। जो भवानंद राय हैं उनको पांडु भी कहते हैं उनको, और जो उनके 5 पुत्र हैं, उनके 5 पुत्र हैं तो रामानंद राय ही हो गए, एक पट्टनायक गोपीनाथ, कला निधि, सुधा निधि, नायक वाणीनाथ। सो ये 5 जो हैं उनके पुत्र थे उनके, तो इनको पांडव कहते हैं इनको। और रामानंद राय को अर्जुन का अवतार बोला जाता है, गौर गणोदेश दीपिका में 120 से 122 में उनको, उनका वर्णन जो है वो अर्जुन के रूप में किया गया है। कई लोग उनको ललिता सखी का अवतार भी बोलते हैं, और कई लोग विशाखा सखी का अवतार भी कहते हैं। और रामानंद राय से महाप्रभु को मिलाने वाले थे सार्वभौम भट्टाचार्य। जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा पर जा रहे थे, तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने बहुत ही विनती से उनको प्रार्थना की कि आप जा रहे हैं तो आप रामानंद राय से अवश्य मिलेगा, क्योंकि कृष्ण प्रेम की गहराई कि जितनी समझ रामानंद राय को है वो शायद और किसी में नहीं मिलेगी। सो महाप्रभु गए, जब वहाँ पर नरसिंह जीयर के दर्शन करने के बाद में गोदावरी नदी के किनारे विद्यानगर जो है शहर है, उसके गवर्नर थे वो, महाराज प्रताप रुद्रा के अंडर आती थी वो जगह। सो वहाँ पर गए तो गोदावरी में स्नान कर रहे थे महाप्रभु। सो स्नान जब वो कर रहे थे तो वहाँ पर रामानंद राय भी आए वहाँ पर। रामानंद राय जब आए तो बहुत ही, कई सारे ब्राह्मण थे उनके साथ में, पालकी में बैठ रहे थे, बड़े सारे मृदंग वगैरह सब बज रहे थे, है ना। महाप्रभु उनको देख के बहुत ही विवल हो गए महाप्रभु, और रामानंद राय भी उनको देख के बहुत ही विवल हो गए, उनका भाव दशा प्रकट होने लग गई। लेकिन क्योंकि वहाँ पर विजातीय लोग उपस्थित थे, जो ब्राह्मण थे वो स्मार्ट ब्राह्मण थे, तो उनकी उपस्थिति में महाप्रभु और रामानंद राय ने अपने भावों को जो है संयत कर लिया, उसको प्रकट नहीं किया उसको। और प्रभुपाद कह रहे हैं कि भावों को प्रकट करना बहुत आसान है, सारे सहजिया कर ही रहे हैं प्रकट भावों को, भावों को संयत करना बहुत कठिन भी है, और इसमें कोई यश भी नहीं मिलता। अगर कोई रो रहा है हरि नाम करते हुए तो सब लोग बोलेंगे देखो कितना उन्नत भक्त है, तो उसको यश मिलेगा उसको। लेकिन अगर कोई भाव प्रकट ही नहीं कर रहा तो आप कैसे पता लगाओगे कि उन्नत भक्त है कि साधारण भक्त है, तो पता लगाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आचरण से पता लगाएंगे, लेकिन 2 मिनट में तो पता नहीं लगा सकते ना। तो इसलिए जो सहजी हैं वो पूजा लाभ प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए अपने भावों को प्रकट करते हैं, जबकि जो अच्छे वैष्णव हैं जो, वो कभी अपने भावों को प्रकट नहीं करते, वो कभी भी रोते नहीं हैं, भगवान के सामने आते हैं। अपने भावों को पकड़ के रखते हैं। सो जब वो उनसे मिले तो उन्होंने चर्चा की, तो अब चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, तो होना ये चाहिए था कि रामानंद राय जो है चैतन्य महाप्रभु से प्रश्न पूछते, लेकिन उल्टा हुआ। चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से प्रश्न पूछे और रामानंद राय ने को बहुत बहुत गर्व नहीं हुआ उनको कि उनसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो रामानंद राय ने बोला कि वक्ता भी आप ही हैं और श्रोता भी आप ही हैं, कितनी रहस्यमय बात है। रामानंद राय ने बोला, मतलब मैं कुछ नहीं बोल रहा, जो आप मुझसे बुलवा रहे हैं मैं तो वही बोल रहा हूँ। और हमारे किसी भी आचार्य ने, अगर आप देखें, हमारे किसी भी आचार्य ने ये कभी नहीं कहा कि मेरे अनुसार ऐसा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। हमारे किसी भी आचार्य, प्रभुपाद ने कभी नहीं बोला कि मेरे अनुसार ऐसा ऐसा होना चाहिए। इनफैक्ट एक बार प्रभुपाद अपने किसी शिष्य के साथ में, उनके कई शिष्य थे, सो प्रभुपाद ने उनसे किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात चल रही थी, तो प्रभुपाद ने पूछा, अच्छा तुम क्या सोचते हो इस बारे में? तो उन्होंने कहा, देखो प्रभुपाद बहुत ही सीनियर डिसाइपल थे, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा, तो उन्होंने देखो प्रभुपाद ये भागवत में ऐसा लिखा कि ऐसा करना चाहिए। प्रभुपाद ने बोला, नहीं नहीं तुम क्या सोचते हो? और बोला, नहीं देखो चैतन्य चरितामृत में ऐसा बोला हुआ है, ऐसा होना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा, नहीं नहीं तुम क्या सोचते हो? तो वो डिसाइपल ने बोला, प्रभुपाद मेरे अनुसार ऐसा होना चाहिए। प्रभुपाद ने देखा, तुम्हारे अनुसार तुम्हें ईगो है ना। दो बार वो अपने आप को उन्होंने कंट्रोल किया भी, लेकिन जब प्रभुपाद ने और उनको कुरेदा, तो क्योंकि उनके मन में ये था ही कि हाँ मेरा भी एक विचार है, तो उन्होंने बोल दिया, भाई प्रभुपाद मेरे अनुसार ऐसा होना चाहिए। प्रभुपाद ने बोला, देखो ये फंस गए तो है ना। तो हमें इस चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि कैसी भी परिस्थिति हो, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम प्रभुपाद, अपने गुरु जो प्रभुपाद के शिष्य हैं, जो प्रभुपाद और पूर्ववर्ती आचार्यों को ही हम उनका प्रमाण दें, उन्हीं को कोट करें, अपने पापी दुष्ट मन की बातें ना ही करें तो अच्छा होगा, है ना। और क्यों नहीं करें? क्योंकि हम जो भी बात करेंगे वो सुनने में कितनी अच्छी क्यों ना हो, उसमें भोग छिपा होगा। क्योंकि हम सब, एटलीस्ट मैं तो, हम सब भोगी ही हैं। हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारी भोग इच्छा भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है ना। इसलिए हम जो भी बात करेंगे उसमें भोग का कुछ ना कुछ गंध अवश्य रहेगी। इसलिए और आचार्यों का प्रमाण देना वो जीवा की तपस्या भी है। जीवा के वेग का दमन करने का मतलब यह भी है कि हम अपने मन से कुछ ना बोलें, हमेशा आचार्यों का प्रमाण देके बात करें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। इससे कभी भी विरोधाभास नहीं आएगा। हम अपने मन से कुछ भी बोलेंगे, चाहे बहुत ही अच्छी बात क्यों ना बोल दें, तो भी विरोधाभास आ जाएगा। इसीलिए महाप्रभु कभी भी, जब तक स्वरूप दामोदर किसी भी रचना को अनुमोदित नहीं कर देते थे, रचना को प्रमाणित नहीं कर देते थे, तब तक महाप्रभु कोई भी नई रचना नहीं सुनते थे। और ऐसा कई बार हुआ, कई भक्तों को, एक भक्त था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा किसके, किसी के भाई थे शायद, भागवताचार्य भगवान आचार्य उनके भाई थे, वो एक बहुत ही सुंदर रचना लेके आए, तो कई उन्होंने कहा मुझे महाप्रभु को सुनानी है, तो स्वरूप दामोदर ने बोला ठीक है भैया मुझे सुनाओ। फिर महाप्रभु को सुनाना, तो उन्होंने स्वरूप दामोदर गोस्वामी को सुनाई, तो उन्होंने उसमें खामियां निकाल दी और उनको बोला कि अभी आप रचना उल्टी सीधी मत करो, क्योंकि उससे और महा उससे रसाभास का एक दोष उत्पन्न हो जाएगा और रसाभास से भगवान प्रसन्न नहीं होते। जैसे हम कई मंदिरों में हम देखते हैं कि एक ही ऑल्टर में राधा कृष्ण के साथ में गौर निताई भी इंस्टॉल कर देते हैं एक ही ऑल्टर के अंदर, तो वो रसाभास है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु जो हैं उनका भाव कुछ और है। वो बलराम जी हैं, जहाँ पे बलराम जी जाते हैं वहाँ पे श्रीमती राधा रानी जो हैं, बलराम जी अपना विहार अलग करते हैं, श्रीमती राधा रानी विहार अलग करती हैं, तो वो रसाभास वहाँ पर उत्पन्न हो जाता है। और जो प्रमाणिक जो फिलोसफिकली जो समझते हैं बात को, वो अगर सपोज जगह कम भी हो तो वो राधा कृष्ण के साथ सिर्फ चैतन्य महाप्रभु के विग्रह इंस्टॉल करते हैं, वो नित्यानंद प्रभु के विग्रह इंस्टॉल नहीं करते। आपने कई मंदिरों में देखा होगा, जो पुराने मंदिर में या वृंदावन में, वहाँ पे कई बार जगह कम होती है तो सिर्फ चैतन्य महाप्रभु के विग्रह होते हैं। तो उसके पीछे ये रीज़न है कि नित्यानंद प्रभु का वहाँ पर रहने से रसाभास उत्पन्न हो जाता है। चलो हम रामानंद राय पे आते हैं, ये बात कहीं से निकल आई। महाप्रभु ने और महाप्रभु ने रामानंद राय जी से प्रश्न इसलिए भी पूछे कि वो रामानंद राय जी को अपने भक्त को उन अपने भक्त की ग्लोरिफिकेशन करना चाहते थे, उनका यश फैलाना चाहते थे। लेकिन इससे हमें ये निर्णय ये निष्कर्ष नहीं निकाल देना चाहिए कि रामानंद राय जो हैं उनकी स्थिति चैतन्य महाप्रभु से श्रेष्ठ है। आप सोचोगे कि नहीं, ऐसा निष्कर्ष कैसे निकाल सकते। लोग ऐसा निष्कर्ष निकाल लेते हैं, लोग हनुमान जी को भगवान राम से ऊपर मानते हैं कि हनुमान जी ने भगवान राम की सहायता की। हालांकि हनुमान जी खुद इस बात को मानते हैं कि भगवान राम की शक्ति ही सारे कार्य कर रही है, लेकिन ये दुनिया भरी पड़ी है ऐसे बेवकूफों से जो कि भगवान राम की अवहेलना करके हनुमान जी की पूजा करते हैं, भरी पड़ी है। और भगवान राम ने एक बार शिवलिंग की पूजा क्या कर दी, लोग शिवजी को ही भगवान राम का स्वामी मानना शुरू कर दिया। अरे भैया, भगवान राम ने तो एक बार शिवजी की जो है पूजा की, शिवजी तो निरंतर कर रहे हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं है क्या? ब्रह्मा जी चारों मुखों से कृष्ण का नाम ले रहे हैं और शिव जी पांच मुखों से, शिव जी के पांच मुख हैं, पांच मुखों से शिव जी निरंतर राम का नाम ले रहे हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उन्होंने बस एक बार क्या पूजा कर दी उनकी शिवलिंग की, कि पूरी दुनिया में यही डिबेट चल रही है कि शिव जी बड़े हैं कि राम बड़े। भगवान अगर अपने भक्तों की प्रशंसा कर भी रहे हैं तो इससे कभी भी ये निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि वो भक्ति बड़ा हो गया भगवान से, ऐसा निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कभी। तो चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से पूछा कि आप मुझे बताइए कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है। तो उन्होंने यहां से डिस्कशन की शुरुआत हुई। अमृत कृष्ण प्रभु आप खड़े हो जाओ। सॉरी। सो रामानंद राय जो है उन्होंने बोलना शुरू किया कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करना ही जीवन का परम लक्ष्य है, सम सिद्धिर हरि तोषिणम, कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करके हम हरि को संतुष्ट करेंगे तो वही जीवन का परम लक्ष्य है। तो महाप्रभु ने बोला कि वर्णाश्रम धर्म का पालन, तो वो जो कार्य हैं वो कार्य तो इस भौतिक जगत में होंगे, इसलिए भाई है ए हो भाई, ये भाई है कुछ और बताओ। तो रामानंद राय ने बोला ठीक है, जो कर्मों का फल है उसको भगवान को अर्पण करना ही जीवन का परम लक्ष्य है। उन्होंने श्लोक बता दिया, क्या है, यद करोषि यद अनाशी यद अशनाशी यद जुहोषी ददासी यद यद तपस्यसि कौन्तेया तत्पुरुष मद अर्पणम्। तो उन्होंने ये श्लोक भी बता दिया कि जो भी करो वो भगवान को अर्पण कर दो। सो महाप्रभु ने बोला कि कर्म फल को अर्पण करने के लिए जो कर्म करेंगे वो तो भौतिक जगत में कर रहे हैं, ये भी बाह्य है, कुछ और बताओ, कुछ और बढ़िया बात बताओ। रामानंद राय ने बोला कि देखिए, वर्णाश्रम धर्म का त्याग करना ही परम लक्ष्य है जीवन का। और इसके लिए उन्होंने क्या श्लोक बताया, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं सारे धर्मों का त्याग कर दो, क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मण ये सब, इन जो ये जो उपाधियां हैं इनका त्याग कर दो। और त्याग कर दो का मतलब है कि संन्यास ग्रहण कर दो, और संन्यास ग्रहण करके हर चीज का त्याग करके फिर आप मेरी भक्ति में जुड़ो। सो महाप्रभु ने बोला ये भी भाई है, ये भी भाई है, कुछ और बताओ इससे अच्छा। रामानंद राय ने ज्ञान मिश्रित भक्ति की बात की। उन्होंने कहा ज्ञान मिश्रित भक्ति जो है वो संन्यास से भी ऊपर की बात है। महाप्रभु ने बोला कि जो ज्ञान है उससे मिश्रित भक्ति जो है वो भय है। जो ज्ञान मिश्रित भक्ति है वो ज्ञान ज्ञान को यहाँ पर जो महाप्रभु ने अर्थ लिया कि जो आपका सांख्य ज्ञान है, मोनिस्टिक फिलॉसफी जो है, वो महाप्रभु ने कहा भय है, कुछ और बात करो। तो रामानंद राय ने ज्ञान शून्य भक्ति की बात की, ज्ञान शून्य भक्ति की बात। महाप्रभु ने बोला ठीक है, अब तुम भौतिक जगत से बाहर आ चुके हो, लेकिन अब तुम विरजा में अटक गए, अभी वैकुंठ में प्रवेश नहीं किया। और क्योंकि वैकुंठ में प्रवेश नहीं किया तो ये भी भय है, ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती, अभी वैकुंठ में प्रवेश नहीं किया, यहां से इस स्थिति में आकर ज्ञान शून्य भक्ति जब हम करने की बात करते हैं तो यहां से भक्ति शुरू हो जाती है, लेकिन अभी वैकुंठ में प्रवेश नहीं किया इसलिए ये भी संपूर्ण नहीं है, कुछ और बताओ। ज्ञान शून्य भक्ति को भी महाप्रभु ने रिजेक्ट कर दिया। और हम लोग बोलते भी अन्य अभिलाषी दाशून्यम ज्ञान कर्मा देना आवेदम, महाप्रभु ने कहा इससे आगे कुछ बताओ। तो फिर रामानंद राय ने बात की दास्य, दास्य भाव में भक्ति की। तो महाप्रभु ने कहा हाँ अब अच्छा लग रहा है, अब थोड़ा सा मुझे अच्छा लगना शुरू हुआ, कुछ और बताओ। तो फिर उन्होंने बात की साख्य भाव में भक्ति की। तो महाप्रभु ने कहा और आगे बताइए। तो उन्होंने बात की वात्सल्य भाव में भक्ति की, और महाप्रभु ने कहा इससे भी आगे कुछ बताओ। तो उन्होंने बात की कि इससे जो टॉप मोस्ट है वो है माधुर्य, माधुर्य भाव में भक्ति। और रामानंद राय जी ने बोला कि जिस प्रकार पृथ्वी में आकाश जल वायु अग्नि ये सारे जो पदार्थ हैं ये सम्मिलित है, उसी प्रकार जो माधुर्य भाव है उसमें शांत दास्य साख्य वात्सल्य ये चारों भाव सम्मिलित हैं। इसीलिए जो श्रृंगार रस है, माधुर्य भाव है, वो सर्वश्रेष्ठ। तो महाप्रभु ने उस समय क्या बोला होगा, क्या बोला होगा महाप्रभु ने? महाप्रभु ने कहा, चलो ठीक है, इससे आगे भी कुछ बताओ। रामानंद राय सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने बोला कि हे महाप्रभु, आपके अतिरिक्त इस पूरे संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इससे आगे की बात है। ये सीमा है, इसके ऊपर की कोई बात नहीं कर सकता। लेकिन आप, क्योंकि स्वयं कृष्ण है, इसीलिए आप ये बात पूछ रहे। तो रामानंद राय ने फिर श्रीमती राधा रानी के प्रेम की बात की कि श्रीमती राधा रानी का प्रेम, जो गोपियों का प्रेम है, माधुर्य भाव में जो प्रेम है, वो टॉप मोस्ट है, और उसके अंदर भी श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम है वो सर्वोच्च है। तो महाप्रभु ने कहा, आप ठीक है, मेरे को इससे भी आगे आपके पास कुछ है तो बताओ। इससे भी आगे आपके पास अगर कुछ है, कुछ बात बताने के लिए, तो आप मेरे को उसका वर्णन करो। तो रामानंद राय पूरे मतलब आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने बोला कि इससे भी आगे है बात, और मैं आपको बताता हूं, मुझे नहीं पता कि आपको अच्छा लगेगा या नहीं। तो रामानंद राय ने फिर बात की प्रेम विलास विवर्त की। अब प्रेम विलास विवर्त जो है बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट है, और मैं इसके बिल्कुल ही अयोग्य हूँ इसके बारे में कुछ भी बात करने के लिए। और जब उन्होंने, रामानंद राय ने प्रेम विलास विवर्त की बात करनी शुरू की, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनका मुंह अपने हाथों से बंद कर दिया। उनका नहीं नहीं मत सुनाओ, मैं नहीं सह सकता। इतनी उच्च कोटि की उन्होंने बात रामानंद राय ने की। और इसी से हमें पता चल रहा है कि सार्वभौम भट्टाचार्य ने, वो कितने सही थे जब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को ये प्रार्थना की कि वो रामानंद राय जी से जाकर मिले। आप अगर चैतन्य चरतामृत के की मध्य लीला का आठवां अध्याय पढ़ेंगे, तो उसमें आप, उसमें प्रभुपाद प्रेम विलास विवर्त को डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा बहुत, तो आप वो पढ़ सकते हैं। अगर आप, आप में क्षमता है पढ़ने की, तो वहां पर आप, आपको ये उपलब्ध है वो चीज। तो महाप्रभु वहां पर कुछ दिन रहे रामानंद राय जी के कहने पर, और फिर उनसे विदा ली। और विदा लेते समय महाप्रभु ने उनको बोला कि आप अपनी जॉब छोड़ दो गवर्नर की, और आप पूरी आ जाओ मेरे पास में, और वहाँ पर हम बैठकर कृष्ण कथा करेंगे। सो रामानंद राय जी ने तुरंत महाराज प्रताप रुद्र को एक चिट्ठी लिख के भेजी कि ऐसे मैं अपने पद छोड़ना चाहता हूँ मैं। तो महाराज प्रताप रुद्र, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के बहुत बड़े भक्त थे और उनसे मिलना चाहते थे, बहुत ही उत्कंठा थी उनको मिलने की, लेकिन महाप्रभु कभी मिले नहीं महाराज प्रताप रुद्र से, क्योंकि महाप्रभु ने कहा कि एक सन्यासी के रूप में मैं टॉप मोस्ट जो आइडियल है, जो आदर्श है, उसकी स्थापना करना चाहता हूँ, तो मैं स्त्री और स्त्री संगी व्यक्ति से दूर रहता हूँ। मेरा सन्यास, मुझे डर है कि मेरा सन्यास आश्रम टूटना चाहिए। तो आप देखो कि महाप्रभु को डर था स्त्रियों और स्त्री संगियों से बात करने में, कि मेरा सन्यास आश्रम खराब, मेरे पे दोष ना लग जाए। लेकिन हमें डर नहीं लगता जब हम स्त्रियों से बहुत ही एकदम खुले हम बात करते हैं, तो हमें डर नहीं लगता। महाप्रभु को डर लग रहा था स्त्रियों से बात करने के लिए। तो हमें स्त्रियों से बात करने में संकोच रखना चाहिए और स्त्रियों को भी पुरुषों से बात करने में संकोच रखना चाहिए। ये दोनों की भक्ति के लिए अच्छा है ना, दोनों की भक्ति के लिए अच्छा है। और अच्छा, महाप्रभु ने चार भक्तों के द्वारा चार सिद्धांत की स्थापना की। महाप्रभु ने रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उसमें सनातन गोस्वामी प्रमुख रूप से थे, सनातन गोस्वामी जी के द्वारा उन्होंने विनम्रता की स्थापना की चैतन्य महाप्रभु ने, कि विनम्रता क्या चीज है। और एक भक्त है महाप्रभु के, दामोदर पंडित, उनके द्वारा महाप्रभु ने निरपेक्षता, ऑब्जेक्टिविटी की का सिद्धांत स्थापित किया। और दामोदर पंडित जो है वो इतने निरपेक्ष थे, बिल्कुल किसी का पक्षपात नहीं करते थे, कि अगर उनको महाप्रभु में भी कोई कमी दिखती थी तो महाप्रभु की आलोचना भी कर देते थे। महाप्रभु एक छोटे से बच्चे से खेलते थे महाप्रभु, उस बच्चे की माँ विधवा थी और बहुत ही सुंदर स्त्री थी वो। तो दामोदर पंडित को लगा कि महाप्रभु इस बच्चे से खेलेंगे तो कभी दोष लग सकता है, तो महाप्रभु ने, तो दामोदर पंडित ने महाप्रभु की आलोचना कर दी उठाकर। और ये जो चारों उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, इनका हम जो है इनकी नकल नहीं कर सकते कभी भी, इनकी नकल करेंगे तो नष्ट हो जाएंगे, है ना। अगर हम सोचे कि हम भी निरपेक्ष हैं और हम अपने सीनियर जो डिवोटीज हैं या गुरु हैं, अगर हमें, हम उनमें कमियां निकालना शुरू कर दें, है ना, तो वो आपकी निरपेक्षता नहीं मानी जाएगी, वो मूर्खता मानी जाएगी। ऐसा नहीं है कि दामोदर पंडित जो हैं उन्होंने कमी निकाली, महाप्रभु तक में कमी निकाल दी, तो हमें भी लाइसेंस मिल गया किसी में कमी निकालने का। हमें किसी में कमी निकालने की ना तो हमारे में योग्यता है और ना ही अधिकार है। टेंपल प्रेसिडेंट को अधिकार है कि वो दूसरे भक्तों में कमियां निकाले, क्योंकि उसकी सेवा है, बहुत ही बेकार सेवा है, थैंकलेस जॉब है, लेकिन उनके पास वो सेवा है। तो जो टेंपल प्रेसिडेंट हैं, जो प्रीचिंग कर रहे हैं, वो अपने जो उनके अनुगत लोग हैं वो उनकी कमियां निकाल सकते हैं, वो ठीक है, लेकिन हम अपने से सीनियर भक्तों की कमियां निकालें तो वो बात ठीक नहीं है। उससे हमारा पतन नहीं होगा, हमारा नुकसान होगा, हमें कोई फायदा नहीं होगा उससे। और दूसरे की कमी ना निकालना जो है वो भी जीवा की तपस्या है, मन की तपस्या है वो भी। और कमी ना निकालने का जो जो उदाहरण है, जो आदर्श है, वो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने स्थापित किया। गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है वो निंदा शून्य उनको कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास आकर किसी और वैष्णव की निंदा भी करता था तो गोपाल भट्ट गोस्वामी उस वैष्णव की का गुणगान करना शुरू कर देते थे। और अगर देखा जाए तो हमें किसी वैष्णव में कमी निकालने का अधिकार इसलिए भी नहीं है क्योंकि उस वैष्णव में तो एक ही कमी होगी, अगर होगी भी तो हमें पता नहीं, हो सकता है हम सोच रहे हैं उसमें कमी है लेकिन नहीं हो, लेकिन हम में तो करोड़ों कमी है। ये तो उसी प्रकार है कि एक छलनी बोले कि देखो सुई तुम में छेद है, अरे सुई में तो एक छेद है और छलनी तो छेदों से भरी पड़ी है। और महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर जी के, तो दो बात हो गई, तो तीसरा सिद्धांत जो है महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर के द्वारा स्थापित किया, सहनशीलता का। हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में पीटा गया उनको कोड़ों से। हमें तो कोई भला बुरा कह दे तो हम उससे बात करना बंद कर देते हैं, हमें लगता है हमारे सबसे बड़ा दुश्मन ही यही है, नहीं, उस भक्त से हम मिलना ही छोड़ देते हैं अगर किसी ने हमें थोड़ा सा भी टोक दिया तो। लेकिन हरिदास ठाकुर 22 बाजारों में पिट चुके थे। कोई भी व्यक्ति उनसे पहले 2-3 बाजारों से ज्यादा मार बर्दाश्त नहीं कर पाया था, मर गया। लेकिन हरिदास ठाकुर 22 बाजारों में उनको मारा गया सार्वजनिक रूप से, और नवाब ने उनको बोला था कि यहाँ तो हरिदास मरेगा, अगर ये नहीं मरा तो तुम मरो। तो जिस व्यक्ति को ऐसी बात बोली हो वो कितने दम से उनको पीट रहा होगा, जरा सोचो, है ना? क्योंकि अपनी जिंदगी का ही सवाल है। और वो पीटते पीटते थक गए, हरिदास ठाकुर ने अपना शरीर नहीं छोड़ा, तो वो परेशान हो गए। तो हरिदास ठाकुर उनसे पूछने, अरे आप परेशान क्यों? वो पीट रहे हैं उनको, और हरिदास ठाकुर उनसे पूछ रहे हैं, अरे परेशान क्यों आप? रसिकानंद प्रभु भी ऐसे थे। रसिकानंद प्रभु का तो रसिकानंद प्रभु मुझे पूरी घटना ठीक से याद नहीं आ रही, एक बार पढ़ना पड़ेगा, काफी टाइम पहले पढ़ी थी। तो वो शायद अपने गुरु की सेवा के लिए उनके शायद गुरु रात को आए, तो वो उनको प्रसाद वगैरह देने के लिए जो वहाँ पे लोकल जो जमींदार था उसके घर में घुस गए वो, और वहाँ से सामान उठाना शुरू कर दिया उन्होंने। तो जा गया वो जमींदार तो उनको पीटना शुरू कर दिया, रसिकानंद को पीटना शुरू कर दिया। तो रसिकानंद प्रभु ने क्या बोला उनको, आपके हाथ में चोट तो नहीं लगी? और जमींदार ने सुना तो उनके पैरों में गिर गया और भक्त बन गया। तो जो भक्त जो है, भक्त जहां तक सोचता है हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हमें अगर कोई पीटेगा तो चलो हम बहुत बड़े भक्त होंगे तो चलो उसको नहीं पीटेंगे, लेकिन भागेंगे तो सही, हम अपने आप को तो बचा। लेकिन हरिदास ठाकुर तो उससे पूछ रहे हैं कि अरे क्या परेशान क्यों? तो उन्होंने बोला, भैया तुम मर ही नहीं रहे, एक प्रॉब्लम है हमारे लिए। तो हरिदास ठाकुर ने फिर योग सिद्धि से अपने शरीर के सारे जीवन लक्षण रोक दिए। तो उन्होंने कहा वो चलो मर गए। तो जाके उन्होंने बोला नवाब को कि हरिदास मर गया। तो उन्होंने बोला, देखो वो मुसलमान था लेकिन काफिर था वो, तो इसको हम मुसलमान की जो रीति है इस्लाम के अनुसार इसको हम दफनाएंगे नहीं, नहीं तो जन्नत चला जाएगा, ये इसको पानी में फेंक दो। तो अच्छा ही हुआ, पानी में फेंका, हरिदास ठाकुर तैर के दूसरी तरफ चले गए और अपना भजन शुरू कर दिया। तो सहनशीलता दिखाई हरिदास ठाकुर के द्वारा, और रामानंद राय के द्वारा उन्होंने चौथा उन्होंने सिद्धांत स्थापित किया कि काम वासना पर विजय, वो रामानंद राय के द्वारा उन्होंने स्थापित की। और उन्होंने बोला, देखो जो रामानंद राय कर रहे हैं वो मैं भी नहीं सोच सकता करने की। और रामानंद राय जी के बारे में तो बोला हुआ है कि स्वहस्ते परान वस्त्र सर्वांग मंडन तबो निर्विकार राय रामानंदेर मन, कि रामानंद राय जी ने एक नाटक लिखा था जगन्नाथ वल्लभ नाटक, और उसके लिए उन्होंने दो देवदासियां जो हैं उनका उन्होंने चुनाव किया जो कि उसको प्रस्तुत करेंगी उस नाटक को। तो उनको अपने हाथ से नहलाते थे, उनको उनका उनके तेल की मालिश करते थे, उनको भाव भंगिमाएं सिखाते थे बिल्कुल एकांत में। सो फिर भी उनका मन निर्विकार रहा। तो चैतन्य महाप्रभु ने इसकी प्रशंसा की, लेकिन महाप्रभु ने साथ में ये भी बोल दिया कि दुर्वार इंद्रिय करे विषय ग्रहण, दारा भी प्रकृति हरे मुन रेपी मन, कि ऐसा सोचना भी मत कि कभी हम ऐसा कर लें। एक लकड़ी की बनी हुई स्त्री, उसको देखकर भी मुनियों का मन भी मोहित हो जाता है। तो जो रामानंद राय कर रहे हैं उसकी तो तुलना ही नहीं की जा सकती। और एक बार एक ब्राह्मण थे, उड़ीसा के ब्राह्मण, वो महाप्रभु के पास आए। उन्होंने बोला कि महाप्रभु मेरी कृष्ण कथा में रुचि है, आप मुझे कृष्ण कथा सुनाइए। महाप्रभु ने कहा आप तो बहुत भाग्यवान हो, आपकी कृष्ण कथा में रुचि आ गई आपकी, लेकिन मैं आपको नहीं सुना पाऊंगा कृष्ण कथा। आप रामानंद राय के पास जाओ और वहां उनसे कृष्ण कथा सुन के आओ। प्रद्युम्न मिश्र जो थे वो ब्राह्मण थे, और रामानंद राय जो है वो करण जाति के थे, जिसको कि कायस्थ या शूद्र माना जाता है। तो महाप्रभु ने एक ब्राह्मण को एक कायस्थ या शूद्र से शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा, और प्रद्युम्न मिश्र चले भी गए वहां पर। और जब चले गए, वहां जाके बैठे, तो रामानंद राय नहीं थे। तो उन्होंने उसके सेवक से पूछा, उनके सेवक से, कि वो कहाँ है रामानंद राय। उन्होंने बोला वो तो देवदासियों को नाटक सिखा रहे हैं उनको एकांत में। तो काफी देर बैठे रहे वहां पर प्रद्युम्न मिश्र, लेट हो गए, रामानंद राय की वेट करते रहे, और उनका मन उचाट हो गया। उन्होंने कहा यार वो अकेले में उनको जाके वो सुंदर लड़कियों को नाटक ही सिखाए जा रहे हैं, तो बड़ी अजीब सी बात है। तो उनका मन उचाट हो गया, तो वो वापस चले गए। उन्होंने बोला महाप्रभु वो तो ऐसे कर रहे हैं, देखो स्त्रियों के साथ में एकांत में बैठे रहते हैं वो। तो महाप्रभु ने बोला नहीं नहीं तुम जाओ और जाके उनसे कृष्ण कथा सुनो। तो जब अगले दिन दोबारा प्रद्युम्न मिश्र गए और रामानंद राय ने महाप्रभु की आज्ञानुसार उनको कृष्ण कथा सुनाई, तो उसको सुनकर बिल्कुल भाव विभोर हो गए और महाप्रभु को धन्यवाद करने आए कि आपने मुझे बिल्कुल उचित व्यक्ति के पास भेजा आपने मेरे को। तो वैष्णवों की क्रिया कई बार हमें समझ नहीं आती, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझे, कि बहुत बुद्धिमान व्यक्ति भी होगा वो भी वैष्णवों की क्रिया देखकर विचलित हो जाएगा। और गदाधर पंडित भी तो गए थे कहां पर, हाँ पुंडरीक विद्यानिधि जी के पास, वृषभानु जो है पुंडरीक विद्यानिधि, उनके पास गए। वो पान मान खा रहे थे, सेंटमेंट लगाई हुई थी उन्होंने और सिल्क के कपड़े डाले हुए थे। तो उन्होंने कहा भैया भोगी लग रहे हैं ये, मुकुंद दत्त के साथ गए थे वो। तो उन्होंने कहा ये मुकुंद मुझे कहाँ पे ले आए, मैं ब्रह्मचारी और ये कहाँ पर पुंडरीक विद्यानिधि भोगी हैं, पूरे सेंटमेंट लगाई हुई है, चामर झुला रहे हैं लोग। तो मुकुंद दत्त समझ गए कि गदाधर पंडित को अच्छा नहीं लग रहा। तो उन्होंने भागवत का एक श्लोक सुनाया, तो वहीं पे बेहोश हो गए वो पुंडरीक विद्यानिधि। और आठ लोग उनको पकड़ रहे थे और पकड़ नहीं पा रहे थे, सारे कपड़े वपड़े सब फाड़ दिए। तब गदाधर पंडित को पता चला कि ओ ये तो महान भक्त है। तो अपने जो उनका अपराध है उसका प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने पुंडरीक विद्यानिधि से दीक्षा भी ग्रहण की। सो वैष्णवों की क्रियाएं देखकर हम उनके बारे में अंदाजा नहीं लगा सकते आसानी से। हमें किसी की मदद चाहिए वैष्णवों की क्रियाओं को समझने के लिए। और ये भी एक कारण है कि हमें कभी वैष्णव निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं वो व्यक्ति किस भाव से क्या कर रहा है। इसलिए हमें कभी वैष्णव निंदा नहीं करनी चाहिए, हमेशा वैष्णव का सम्मान करना चाहिए। अगर आपको किसी वैष्णव की कोई बात पसंद नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही है आपको, तो आप इतना कर सकते हो कि आप उस वैष्णव से गुह्य बात नहीं करो, लेकिन उसकी निंदा करने का अधिकार कभी भी किसी को प्राप्त नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात। और एक बात और बोल के मैं विराम दूंगा कि महाप्रभु के 3 साढ़े 3 पार्षद थे महाप्रभु के, बहुत ही अंतरंग थे, है ना। सो एक तो रामानंद राय ही है ना, एक स्वरूप दामोदर गोस्वामी थे और एक शिकी माहिती थे, तो 3 हो गए। और एक थी शिकी माहिती की बहन, उनकी बहन का नाम बता दो, चलो माधवी देवी। तो वो उनकी बहन, क्योंकि वो स्त्री थी इसलिए उनको आधा गिना जाता है। तो 3.5 पार्षद महाप्रभु के माने जाते हैं, जो कि बहुत ही अंतरंग पार्षद। और महाप्रभु की लीलाओं के अंत में महाप्रभु सदैव 24 घंटे कृष्ण कथा में लीन रहते थे, और उनके भाव की पुष्टि करने के लिए 2 व्यक्ति उनके साथ हमेशा रहते थे, गंभीरा में रामानंद राय और स्वरूप दामोदर गोस्वामी। तो इतने इतने उच्च कोटि के भक्त हैं रामानंद राय। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमें रामानंद राय से विरह नहीं हो रहा है ना, हमें विरह होना चाहिए लेकिन हमें उनसे विरह नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा उनसे कोई संबंध ही नहीं है। विरह उससे होता है जिससे संबंध होता है, और रामानंद राय ही क्या, हमारा किसी भी वैष्णव से कोई संबंध नहीं है, हमें किसी से विरह नहीं होता, हमें प्रभुपाद से विरह नहीं होता। रामानंद राय की तो बात ही बहुत दूर की है। विरह होने के लिए संबंध का होना बहुत ही आवश्यक है। जब तक हमारा किसी वैष्णव से संबंध नहीं होगा तब तक उससे विरह नहीं हो सकता। तो विरह की बात करने से पहले हमें संबंध की बात करनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जे आने लो प्रेम धन गाने से पहले हमारा संबंध होना चाहिए, नहीं तो मजाक लगेगा जे आने लो प्रेम धन गाना। एक बार गौर किशोरदास बाबा जी महाराज थे या बंसीदास बाबा जी महाराज थे, शायद गौर किशोरदास बाबा जी महाराज थे, अब चीजें भूल जाते हैं क्या करें, भौतिक दिमाग है ना। सो वो नाव नाव से जा रहे थे, नाव से पार कर रहे थे, तो जो नाविक था मल्लाह था वो गा रहा था जे आने लो प्रेम धना। थोड़ी देर तो सुनते रहे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, फिर उसको बोला भैया रहने दे मत गा। उसने कहा तुझे तो इसका मतलब पता नहीं है, यहाँ पे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, तू तो ट्यून में गा रहा है ना। सो जो शुद्ध वैष्णव है उनको विरह होता है, उनको क्योंकि उनका संबंध होता है उनका। हमारा हमें विरह की बात नहीं करनी चाहिए अभी, हमें अभी संबंध की बात करनी चाहिए पहले, हमें वैष्णवों से और प्रभुपाद से संबंध हम बना सकते हैं, जो हमारे आसपास इर्द गिर्द जो वैष्णव हैं उनके साथ संबंध बनाकर। आसपास के वैष्णव से संबंध है नहीं, और हम बात करें कि हमारा संबंध तो प्रभुपाद से है, अपने गुरु से संबंध है नहीं, हमारा संबंध भक्ति सिद्धांता सरस्वती है, ऐसे नहीं चलेगी कार्य, ये बिल्कुल बकवास बात है, इसमें कोई तत्व नहीं। संबंध धीरे धीरे हम विकसित कर सकते हैं, उसके लिए हमें पहले आपस में सब वैष्णों को संबंध बनाना चाहिए आपस में, और उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। बिना प्रयास के सिर्फ हरे कृष्णा बोल के संबंध नहीं बनते, संबंध बनाने के लिए आपस में एक दूसरे की सहायता करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, तो जाकर संबंध बनेंगे। ऐसे हवा में संबंध नहीं बनेंगे हरे कृष्णा बोल के या वांछा कर्तव्य करके, तू ये जा मैं वो गया, ऐसे नहीं संबंध बनते। और यही कारण है कि कई सालों तक एक ही मंदिर में इकट्ठे एक दूसरे की शक्लें देखते रहने के बावजूद भी प्रगाढ़ संबंध आपस में नहीं बन पाते। और तो कुछ भी गए। महाप्रभु ने भवानंद राय को बोला भी था कि देखो आपके 5 पुत्र हैं, लेकिन जो आपका जो जो एक पुत्र है रामानंद राय, उससे मेरा सिर्फ देह मात्र का भेद है, और कोई भेद नहीं। तो रामानंद राय इतने उच्च कोटि के भक्त हैं और महाप्रभु के भगवान कृष्ण के नित्य पार्षद हैं। श्रील रामानंद राय की, श्रील प्रभुपाद की।